राधे
जगत गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रेम रस मदिरा ग्रंथ के 1008 पदों में से एक पद की व्याख्या आज आप लोगों के सामने की जा रही है। वह पद है, तजी क्यों प्रियतम ब्रज बनितान। एक गोपी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अरे सखी, श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों का त्याग क्यों कर दिया। यह प्रश्न करने वाली ऋचा की अवतार है। शास्त्र वेद के विज्ञान के अनुसार इससे बड़ा आश्चर्य और कोई हो नहीं सकता कि माधुर भाव निष्काम गोपियों का श्याम सुंदर ने अकारण ही परित्याग कर दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत काल से अब तक यदि कोई सबसे बड़ा आश्चर्य विद्वत वर्ग के लिए हो सकता है तो यही हो सकता है। क्यों क्यों? इसलिए कि भगवान का यह विरद है कि जो जीव जितनी मात्रा में और जिस भाव से मेरे शरणापन होगा, मैं उतनी मात्रा में उस भाव से उससे प्यार करता हूँ। फिर इतिहास भी बताता है कि एक सकाम भक्त द्रौपदी की पुकार पर भगवान आ गए, गजराज की पुकार पर भगवान आ गए, उन दोनों के दुख को दूर किया, जबकि इन दोनों का साधन तो अत्यंत निम्न कोटि का माना जाता है। रसिक लोग गजराज द्रौपदी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने सुख और स्वार्थ के लिए ही भगवान को पुकारा था। वे दोनों सकाम भक्त थे। सकाम भक्ति करते समय तो डेंजरस है ही, लेकिन कर लेने पर भी उसका स्थान बहुत ही नीचा है। पहले जो की जाती है वो कौन सी भक्ति है? साधना भक्ति। और जो आपसे नेचुरलिटी में हो जाए वो कौन सी भक्ति है? भाव भक्ति। अर्थात लगन लगाना साधना भक्ति, लगन लग जाना भाव भक्ति। उसके बाद आती है प्रेमा भक्ति, जो हमें प्राप्त होगी। साधन भाव भक्ति का होगा और फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। साधक यहीं तक पहुंचता है। अब साधक कृत्य कृत्य हो गया, लेकिन रस की अनुभूति में वह सबसे पीछे है। प्रेमा भक्ति प्रथम रस है, उसके आगे स्नेह भक्ति, उसके आगे मान भक्ति, उसके आगे प्रणय भक्ति, उसके आगे राग भक्ति, उसके आगे अनुराग भक्ति और फिर भावावेश भक्ति। इतनी क्लास और है। यह भी हम समझते हैं कि अनुराग भक्ति तक महालक्ष्मी ही जा सकती हैं, जो भगवान की अर्धांगनी है। भावावेश क्लास में सिद्ध गोपियां हैं। देखिए, कुब्जा भी भगवान को प्रियतम मानती है, रुक्मणी भी भगवान को प्रियतम मानती हैं, गोपियां भी भगवान को प्रियतम मानती हैं। सबके प्रियतम भगवान श्याम सुंदर है, लेकिन कुब्जा केवल अपने सुख के दृष्टिकोण से भगवान को प्यार करती है और प्रेमा भक्ति तक ही पहुंची। रुक्मणी और महालक्ष्मी की अवतार 16108 पटरानियां, इन्होंने अपने सुख के लिए प्रश्याम सुंदर के दृष्टिकोण से भगवान को प्यार किया। ये सब की सब अनुराग भक्ति तक पहुंची, लेकिन श्याम सुंदर ही जिनके जीवन है और जिनके सुख के लिए ही जिनका जीवन है, जिनके लिए गोपियों ने कहा भवदायुष्मय, आप क्या हैं, भगवान है? नहीं नहीं, मेरे प्रियतम हैं, मेरी आयु है, मेरे जीवन है। आप जानते ही हैं कि आयु समाप्त हो गई तो शरीर कोई वर्क नहीं कर सकता, वह नथिंग हो जाता है, जीरो हो गया, उसे लोग मिट्टी कहते हैं। इसलिए अवश्य ही आप मेरे प्राण हैं और मैं आपका शरीर हूं। वेद कह रहा है यस्य यदम शरीरम। फिर गोपियों के परित्याग का प्रश्न ही कहां पैदा होता है, जब महालक्ष्मी भगवान का परित्याग नहीं कर सकती तो गोपियों का परित्याग भगवान ने कैसे किया। फिलॉसफी ये है कि भगवान के मिलने के बाद अनंत काल तक कभी भी स्वप्न में भी एक बार भी उससे वियोग नहीं हो सकता। यह फिलॉसफी हमेशा हम सबको याद रखनी है। जिसके मिलने के बाद वियोग असंभव हो, उस मिलन का नाम परमात्मा का मिलन, भगवान का मिलन, ईश्वर का मिलन। और जिसके मिलन के बाद वियोग अवश्य हो, उसका नाम मायिक मिलन, जागतिक मिलन, संसार का मिलन। संसार में जितने भी लोग हैं, इन सब का जो प्यार है, उसका एक दिन वियोग अवश्य होगा, कोई बच नहीं सकता। अगर स्त्री पति दोनों एक साथ विष खाकर भी मर जाएं, तो भी मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार दोनों को अलग अलग जाना होगा। ईश्वरीय कानून के अनुसार वियोग वहाँ कंपलसरी है। आप इस शरीर से सदा संयुक्त नहीं रह सकते। आपका शरीर सदा आपके साथ नहीं रह सकता। स्त्री हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, सखा हो, सखी हो, आदि तो सब नीचे की चीजें हैं। फिर आपका इनसे नित्य संबंध किस प्रकार से हो सकता है? संसार नश्वर है, इसलिए इससे वियोग अवश्य होगा। किंतु ईश्वर नित्य है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दिव्य है, इसलिए ईश्वर मिलन के बाद वियोग हो नहीं सकता। एक बार परमात्मा से जीव का मिलन हो गया, उसके बाद वियोग नहीं हो सकता। और गहराई में चलिए, संसार की प्रत्येक पर्सनैलिटी काल, कर्म, गुण, स्वभाव के अधीन है और अपने अनंत जन्मों के पाप पुण्य के संचित संस्कार के अधीन ही होकर जीव को 84 लाख योनियों में बरबस भटकाया जाता है। हम अपने संस्कार, संचित संस्कार के अधीन होकर ही इस संसार की 84 लाख योनियों में बार बार आते हैं और 84 लाख योनियों को बार बार भोगते हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए वह जीवात्मा परमात्मा की उपाधि पाकर ही स्वतंत्र हो जाता है। जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है, बस वही जीव स्वतंत्र हो जाता है। ये दोनों सदा के लिए एक हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति हो गई, जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। हम लोगों को हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कई बार बताया है, महात्मा और परमात्मा ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। एक ऐसे समझे हम, जिस प्रकार से हमारे संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब दूसरी व्यक्ति की आत्मा जीवात्मा कुछ क्षणों के लिए हावी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं उसे भूत लग गया। हम लोग बोलते हैं ना, अरे उस अमुक व्यक्ति को भूत लग गया, भूत ग्रही हो गया, जीवात्मा ने दूसरी जीवात्मा पर अधिकार कर लिया। अर्थात पहली जीवात्मा ने दूसरी जीवात्मा के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। उतनी देर तक अधिकार जमाने वाली आत्मा उस पर हावी रहेगी और उतनी देर तक उसी के द्वारा, उसी की नॉलेज के द्वारा, उसी के संकल्प के द्वारा सारे कार्य होंगे। या हम लोग देखते हैं कि ये भूत लगा हुआ है इस पर, ऐसे ही संत लोगों के ऊपर, महात्मा लोगों के ऊपर नंदभूत भूत लग जाता है। जिस पर परमात्मा हावी हो गया उसका नाम महात्मा। इस प्रकार से जब वो भूत ग्रस्त हो गया, अपना वर्क वह स्वयं नहीं कर सका, तो उस पर जो भूत हावी है वही भूत वर्क करेगा। अगर हमारे ऊपर भगवान हावी हो जाए जिस जीवात्मा के ऊपर, तो उसके लिए भगवान अनंत काल के लिए अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। वह जीवात्मा उससे एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकती। इसलिए जीव से भगवान का वियोग हो ही नहीं सकता, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। और गहराई से समझिए, जीवात्मा और परमात्मा के मिलने के पहले गुरु के द्वारा अंतःकरण शुद्धि के पश्चात दिव्य प्रेम दान किया जाता है। यह दिव्य प्रेम दान ईश्वर की सबसे अंतरंग शक्ति है। इस शक्ति के अधीन होकर ही ईश्वर सदा जीवों पर कृपा करता है। इस शक्ति से ईश्वर एक क्षण को भी पृथक नहीं रह सकता। तो जिसके पास वह शक्ति आ गई, उसके पास ईश्वर नेचुरल आ गया। अब यदि इस प्रेम का वियोग हो, तभी ईश्वर का वियोग हो सकता है। और प्रेम का वियोग हो, तभी ईश्वर का वियोग हो सकता है। जिस प्रकार से एक रसगुल्ला नंदी नीम के फल को खाने के लिए तैयार नहीं होता, कॉमन सेंस से समझ लीजिए, उसी प्रकार से परमात्मा से जीव के मिलन जब हो गया, तो फिर ये संसार की कामना वो जीव कैसे करेगा? एक मूर्ख भी कल्पना नहीं कर सकता। अस्तु वियोग का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सकाम भक्तों का ही भगवान से नित्य मिलन हो जाता है, तो निष्काम भक्त उन गोपियों का परित्याग कैसे? और अगर गोपियों का परित्याग हुआ, तो फिर तो ब्रह्मा शंकर भी ये साहस नहीं कर सकते कि उनका भगवान से नित्य मिलन रहेगा। गलत, क्योंकि ब्रह्मा शंकर को स्थान तो ब्रज गोपियों से बहुत नीचे का है। जब ब्रह्मा शंकर से भी आगे अथवा उनकी आचार्यां, उनकी गोपियां गुरु के रूप में उनका प्रभु से वियोग हो गया, तो कोई भी जीव भगवत प्राप्ति की प्लानिंग ही नहीं करेगा। जन्मांतर सहस्रेशु, इस श्लोक के अनुसार हजारों जन्मों तक प्रयत्न करके, हजारों जन्मों के अनवरत प्रयत्नों के पश्चात कहीं जाकर वह सौभाग्य प्राप्त करे कि श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो इस मायाबद्ध हृदय में, और फिर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद ईश्वर प्राप्ति हो गुरु के द्वारा, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बाद फिर वियोग हो जाए, ये क्वेश्चन पैदा हो गया। अगर परमात्मा और जीवात्मा का वियोग हो सकता है, चाहे वह एक क्षण को भी हो, उस समय उस क्षण जीव के ऊपर कौन रहा? माया अथवा ईश्वर अथवा जीव? अब ये प्रश्न पैदा हो गया कि अगर कहा जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा का वियोग हो सकता है भगवत प्राप्ति के पश्चात, तो तो उस समय उस जीव के ऊपर किसका अधिकार हो गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले प्रवचन में दिया जाएगा। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग जगत गुरु कृपालु परिषद पॉडकास्ट।